میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا، ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے۔ تو درود پاک دنیا اور آخرت کی برکتیں دلانے والا عمل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس بیان میں قرآن پاک کی آیات، ترجمہ اور تفسیر، اور پھر اس ضمن میں علماء کے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ان سے فرماؤ، تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، جو خوش نصیب اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس آیت مقدسہ میں ان خوش بختوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں الحمدللہ یہ ہر وقت جاری ہیں، یہ ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ اللہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب سے جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.
ایک حدیث ہے, ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں, اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے. تو اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے شعر میں لکھا ہے کہ عرش عالم کے رب کی قسم, جس کو جو بھی ملا ہے محبوب ذیشان ہی سے ملا ہے, دونوں جہانوں میں جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں وہ ہمارے آقا و مولا کا صدقہ ہی بڑھ رہا ہے. تو یہ تو وہ نعمتیں جو ہر ایک کو مل رہی, اور جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے تو اس کے متعلق دستور یہ ہے کہ اس کی عطاؤں میں بالکل کمی نہیں. جو جاتا ہے اپنے ظرف یعنی اپنے برتن کے مطابق انعام پاتا ہے. جی ہاں, کسی عاشق نے کہا کہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ ہے کہ وہاں منصور جاتے ہیں تو امام منصور بن کر آتے ہیں, محمد بن محمد جائیں تو امام غزالی بن کر آتے ہیں, حسن سنجری جائیں تو خواجہ معین الدین چشتی بن کر آتے ہیں, احمد رضا جائیں تو امام اہل سنت بن کر جاتے ہیں. تو جو جیسے جاتا ہے, جتنا جس کا ظرف جس کا جتنا برتن اتنی عطائیں لیتا ہے, اپنی جھولی بھر کر ہی لوٹتا ہے. یہ وہ عطائیں ہیں, یہ وہ عطائیں ہیں جو ہر وقت تقسیم ہوتی ہیں. یعنی انتہائی گناہگار جائے اسے بھی انعام ملتا ہے, امیر جائے غریب جائے فقیر جائے رئیس جائے بادشاہ ہو غلام ہو, دربار رسالت میں پہنچ جائے تو انعام ضرور پاتا ہے. اور یہ وہ انعامات ہیں جو دربار رسالت سے ہر ایک کو ملتے ہیں. اور چند ایک کا ان آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ, اور جب آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں, کون؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی آنے والا مومن ہو کافر نہ ہو, عاشق رسول ہو منافق نہ ہو, جس کے عقیدے سچے ہوں, نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو, نہ صحابہ کرام کا گستاخ ہو, نہ اولیاء کرام کی بے ادبی کرنے والا ہو, جتنے اسلامی عقیدے ہیں سب کو ماننے والا ہو, جب دربار رسالت میں حاضر ہوگا تو کیا ملے گا؟ آگے فرمایا فقل, فقل یعنی تو ان سے فرماؤ, یعنی محبوب جو آپ کا سچا غلام آپ کے دربار میں آ جائے اسے فرمائیے سلام علیکم, تم پر سلام. یہ پہلا انعام ہے. اور علماء نے اس کے دو معنی بیان فرمائے, ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے غلاموں کو سلام ارشاد فرماتے, اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ کہ سلام رب کا ہے, اور رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ ہمارا سلام انہیں پہنچا دیں. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیسا بڑا انعام ہے کہ بندہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو رب رحمان کا سلام اسے نصیب ہوتا ہے. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر بند نہ دیار طیبہ کو کس کھلنا ہے قسمت کا. یعنی جو مدینے کا بلاوا آیا ہے نا, یہ تو قسمت کے کھلنے کا جیسے ایک پروانہ مل گیا ہے. جی ہاں, کہ جس کی قسمت کھلنے لگی ہے, جس کی بگڑی سورنی ہوتی ہے, وہ آدمی سفر مدینہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی سمجھ لو قسمت کھل گئی ہے. پیارے اسلام بھائی, یہ پہلا انعام تھا. अल्लाह पाक ने मजीद इरशाद फरमाया, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है। ये दूसरा इनाम कि जब बंदा बारगाह रिसालत में पहुंचता है तो उसे खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह पाक ने रहमत को अपने जिम्मे करम फरमा लिया है। क्योंकि सूरह नाम में मजीद फरमाया, अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअम बिजहाला सुम्मा ताब मिन बादिही व असलहा फअन्नहु गफूरुर रहीम, कि तुम में से जो कोई नादानी से कोई बुराई कर ले फिर उसके बाद तौबा करे, अपनी इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये रब ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने वो दरबार हमें अता फरमाया। उन्होंने लिखा है, ये मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी किताब है, इसके दो जिल्दें हैं। इसके दूसरी जिल्द के पेज नंबर 308 पर इमाम जौजी रहमतुल्लाह ताला ले के हवाले से नकल है, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन हर्ब हिलाली रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, एक मरतबा में रोज़ा रसूल पर हाजिर था, एक अरबी अरब का देहात में रहने वाला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आप पर जो किताब नाजिल फरमाई यानी जो कुरान नाजिल फरमाया उसमें एक आयत ये भी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा करने वाला मेहरबान पाए। आया आका, मैं अल्लाह से अपने गुनाह कसूर की मुआफी तलब करते हुए हाजिर दरबार हूं, आपको अल्लाह की बारगाह में अपना शफी बनाता हूं, ये कहकर वो रोने लगा और उसकी जबान पर कुछ अशआर आने लगे जिसका तर्जमा उलमा ने लिखा कि ए वो बेहतरीन जात जिसका मुबारक वजूद इस जमीन में दफन किया गया तो इसकी उम्दगी और पाकिजगी से मैदान और टीले मुअत्तर हो गए, मेरी जान फिदा हो उस कब्रे अनवर पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, जिसमें पाक दामनी सखावत और अफ्वो करम का बेश बहा खजाना है। वाशिक रसूल बार बार इन अशार की तकरार करता रहा, गुनाहों से माफी मांगता रहा, अश्क बार आंखों से वहां रुखसत हुआ। हजरत सईदना मोहम्मद बिन हर्ब हिलाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं सोया तो मेरी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी, ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हुआ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, उस आराबी उस देहाती से मिलो और उसे खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी शफाअत की वजह से उसकी मगफिरत फरमा दी है। बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार उस पाक दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए। और सच्ची बात है कि किस्मत और मुकद्दर वाले ही जाते हैं। बाद औकात हम ये अपने अंदाज में कहते हैं कि जना हम तो बहुत गरीब हैं, हैं हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो मदीने जाने के असबाब ही नहीं। तो ये याद रखिएगा कि मदीने का जो सफर है ना, ये असबाब से नहीं होता, ये बुलावे से होता है। जी हाँ,
कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वो ही मदीने को जा रहे हैं।
तो तड़प पैदा करें, तमन्ना पैदा करें। उलमा फरमाते कसरत दुरूद व सलाम करें, कि जो अल्लाह के नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ता है वो दरबारे मुस्तफा की हाजिरी पर नसीब हो जाती है। और एक तजर्बा अगर दावत इस्लामी के दीनी कामों में देखा जाए, बारहा का तजर्बा है, फजर के लिए उठाएं, जैसे फजर के लिए उठाते इसको सदाए मदीना कहा जाता था, ये फजर के लिए आप मुसलमानों को जगाएं, क्योंकि उसमें अमीर अहले सुन्नत ने दुआ लिखी है, अल्लाह पाक आपको बार बार हज नसीब फरमाए, बार बार मीठा मदीना दिखाए। जाती मुशाहिदा है कि जो फजर में उठाने वाला, जो लोगों को फजर में उठाते हुए हाजरी मदीना की दुआएं देता है, अल्लाह पाक करम फरमाता है, वो जरूर मदीने की हाजरी से मुशरफ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक हमको भी हाजरी नसीब फरमाए। तो इस आयत मुबारक में एक बड़ी प्यारी वजाहत हो गई कि जो दर मुस्तफ़ा पर पहुंच जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं, या तो अपनी तरफ से सलामती की दुआ देते हैं या रब ताला का सलाम पहुंचाते हैं। जो उस पाक दर पर पहुंच जाता है रहमतों के साए में आ जाता है, क्योंकि मदीना तो मदीना ही है, जिधर देखिए रहमत ही रहमत है, कि हर समत रहमतों की बरसात हो रही है, हर समत रहमतों की बरसात हो रही है, है रहमतों का दरिया सरकार का मदीना। अल्लाह पाक हमको भी हाजिरी नसीब फरमाए कि किसी के जहन में सवाल उभर जाए कि ये वो आयत करीमा तो उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी जिंदगी के साथ इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे, लिहाजा ये जो सलाम फरमाने की बात है, रहमतें मिलने की बात है, वो जाहिरी जिंदगी के साथ थी। अब तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब ये इनामात मदीने में जाकर कैसे मिलेंगे? क्या बात है उलमा की। अल्लाह हमको तौफीक दे कि तफसीर पढ़ने की आदत बनाए। और देखें दावत इस्लामी का कितना बड़ा हम पर एहसान है, ये जो बात नादान कहते हैं ना, यार दावत इस्लामी ने क्या किया है, यार क्या नहीं किया, यार क्या नहीं किया भाई। आप क्या बच्चा पैदा होता है आप कान में अजान देते, ईमानदारी से बताइए बच्चे के कान में अजान देने का सिखाया किसने आपको? दावत इस्लामी ने सिखाया। बच्चे की तरबियत कैसे करनी है? आज आप और हम अगर अपने खानदान में, मुझे तो घर में तो कई मर्तबा पहले चेहरे देख रहा हूं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं दुनिया में जहां भी आप सुन रहे, आप ईमानदारी से अपने खानदान का जायजा ले लें कि आपके अपने खानदान में हाफिज कितने हैं, ईमानदारी से नाजरा पढ़े हुए दुरुस्त कुरान पढ़े हुए कितने, बच्चे जवान बूढ़े सब देख ले। आप कैलकुलेशन करेंगे, यार मेरे खानदान में तो 8 हाफिज हो गए, 10 हाफिज हो गए, 15 हाफिज हो गए, बच्चियों में भी हाफिजा बन गई, बच्चियों में भी आलिमा बन गई, ये हमारे बच्चे आलिम बन गए, तखसुस कर रहे भाई, उलमा का कोर्स कर रहे। ईमानदारी से अपने आप को पूछे कि फैजान किसका है, फैजान किसका है? आप अपने ऊपर देखे, हमारे वालिद दादा नाना इस खानदान में तो कोई हाफिज नहीं गुजरा। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मैं अपने खानदान को देखता हूं तो मेरे खानदान में तो ऊपर तो कोई भी हाफिज आलिम कोई भी नहीं है, लेकिन जब अपने नीचे देखता हूं तो आज सिर्फ मेरे खानदान में, उस दिन हिसाब लगा रहे थे हम, 11 या 13 हाफिज है। और मैंने अपने भाइयों से ही कहा, मैंने कहा यार अभी कभी सोचा है ये कैसे मिला? अगर बच्चियों में और बच्चों में देखते कि आलिम कितने, तो इसमें भी 9-10 की तादाद है, कहां से बन गए भाई ये शऊर कहां से मिला? तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल ने क्या नहीं दिया हमको। आप कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं आसान उर्दू में, एक नहीं 4 किस्म की तफासीर, मकतबतुल मदीना शाया कर चुका, सिरातुल जिनान 10 जिल्दों में है, इफहामुल कुरान 1 जिल्द में, 1 जिल्द में भी पूरा कुरान है। अभी नई तफसीर आई है, तफसीर तालीमुल कुरान 2 जिल्दों में है, तफसीर मारफतुल कुरान ये 3 जिल्दों में। अब पढ़ने वाले तो बने। अच्छा आप कहेंगे जरा मुझे पढ़ना नहीं आता, अब देखिए कितना बड़ा काम है ये, आपको पूरी तफसीर रिकॉर्ड कर कर दे दिए, भाई सुन तो लो कम से कम। अच्छा सुनेंगे तो कितने पैसे लगेंगे यार, मोबाइल है मुफ्त में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, मुफ्त में कर लो यार, कुरान पढ़ो समझो सुनो तो सही। रोजाना अपनी गाड़ी में ही हम अगर अपनी फैक्ट्री जाते हैं, अपने कारोबार में जाते हैं, आधा आधा घंटा एक एक घंटे का सफर करते हैं यार, हैंड फ्री लगा लो, जाते आते सुनोगे 2, 5, 10 महीनों में आपका ही पूरा कुरान हो जाएगा, आपको लज्जत मिलेगी। तो ये जो शैतानी वसवसा है इसके मुताबिक उलमा ने क्या लिखा कि आयत करीमा, मैंने किसी ने कहा ना कि जाहिरी हयात में ये सब हो सकता था, अब कैसे होगा, तो उलमा ने लिखा है कि आयत करीमा में वक्त और जमाने की कोई कैद नहीं है। ये नहीं फरमाया गया कि ए महबूब जो आपकी जाहिरी जिंदगी में आए तो उसे सलाम फरमाइएगा, या 50 साल तक का कानून है, या आइंदा 100 साल के अंदर अंदर ये कानून है, फिर ये इनामात बंद हो जाएंगे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कोई कैद नहीं लगाई गई, तो हम कैसे लगाएंगे भाई, हरगिज़ नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर एक हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे विसाले जाहिरी के बाद मेरे मजार पर हाजिरी दी वो ऐसे है गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी जियारत की। मसला खत्म, पता चला जो रोजे पुर नूर पर हाजिरी देता है वो ऐसा ही है जैसे जाहिरी जिंदगी में अल्लाह के नबी के दरबार पर हाजिर होता है। और रब ताला क्या फरमा रहा है कि ए महबूब जो गुलाम सच्चा पक्का मुसलमान आपकी खिदमत में आ जाए उसे सलाम भी पहुंचा दीजिए, रहमत की खुशखबरी भी सुना दीजिए, तो पता चला कि जो मदीने का मुसाफिर हो जाए वो इन इनामात का हकदार बन जाता है। इमाम हाकिम ने एक रिवायत लिखी है, हजरत दाऊद बिन अबू सालेह रहमतुल्लाही अलैह फरमाते, एक दिन दो जहान के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने जीशान पर खलीफा मरवान हाजिर हुआ। उसने एक शख्स को देखा कि सरकार के कब्र अनवर पर मुंह रखे हुए था, तो खलीफा मरवान को चूंकि मसला मालूम नहीं था, लिहाजा उस साहब की गर्दन पर हाथ रखकर कहा, जानते हो क्या कर रहे हो? वो साहब जो थे उन्होंने फरमाया कि हाँ जानता हूं। ये कहकर जब खलीफा मरवान की तरफ मुंह फेरा, कौन थे वो? वो मशहूर साहबी रसूल मेजबान मुस्तफा हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु थे। तो आपने खलीफा को समझाते हुए कहा कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि सहाबा किराम का भी यह अकीदा था कि रोज़े मुस्तफ़ा पर हाजिरी ऐसे नहीं है जैसे हम अपने फौतशुदा वालदेन की कब्रों पर जाते हैं। अल्लाह के फजल से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजार पाक में दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा हैं, जैसे जाहिरी जिंदगी मुबारक में सलाम सुनते थे, जवाब इरशाद फरमाते थे, यूं ही अब भी सलाम सुनते हैं और जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। ये तो बाकायदा हदीस में इरशाद हुआ, जहां सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम दुरूद पढ़ते हैं आप तक पहुंचता है, जब आप मजार में तशरीफ फरमा होंगे तब दुरूद कैसे पहुंचेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नबियों के जिस्म खाना अल्लाह पाक ने जमीन पर हराम फरमा दिया है, अंबिया किराम जिंदा हैं, रिस्क भी दिए जाते हैं। जी हाँ, और आला हज़रत ने तो बहुत साफ इरशाद फरमा दिया ना कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कि अल्लाह की कसम आप जिंदा हैं, अल्लाह की कसम आप जिंदा हैं, बस दुनिया की नजरों से आपने पर्दा फरमा लिया है। और इस तरह के वाकयात बेशुमार किताबों में लिखी, बड़ी प्यारी किताब है आशिकान रसूल की 130 हिकायात, मकतबतुल मदीना से खरीद लें, और ये तीन दिन आप हैं जब जब मौका मिले पढ़ लें, मोबाइल में डाउनलोड कर ले, मुफ्त ले ले भाई ये, ना खरीदे इसको, मोबाइल में देख देख के पढ़ते रहे। उसमें एक बड़ा प्यारा वाक्य लिखा है कि शेख अबू नसर अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि मैं हज से फारिग होकर मदीने आया, रोजे अनवर पर हाजिर हुआ, हुजरा शरीफा के करीब बैठा हुआ था, हजरत शेख अबू बकर दियार बिकरी रहमतुल्लाही अलैह तशरीफ लाए, चेहरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अर्ज की, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो रोजे अनवर के अंदर से आवाज आई, वालेकुस्सलाम या अबा बकर। सैयदना नूरुद्दीन ईजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हाजिर हुए दरबार रिसालत में, अर्ज किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाते जितने लोग उस वक्त हाजिर थे उन सब ने सुना, रोजे अनवर से जवाब आया, वालेकुस्सलामु या वलदी, तुझ पर भी सलाम हो ए मेरे बेटे। और आगे सुने शेखुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाही अलैह रोजे पुरनूर पर हाजिर हुए, बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज की, रोजे मुकद्दस से आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या मोहम्मद हाशिम ततवी। तो ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, कोई आया पाके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह तआला, अब देखिए इश्क़ो मोहब्बत की तो क्या बात है, वाकयात पढ़े से बहुत सारे वाकयात किताबों में लिखे, ऑथेंटिक किताबों में लिखे, कोई कहे कि कहाँ से लिखा है, बुजुर्गों की किताबों का हवाला दें, उसके पेज नंबर लिखे हुए हैं। जी हाँ, शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई का वाकया बहुत मशहूर है, बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है। वाकया क्या है कि हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाही अलैह जब हज से फारिग होकर हुए और मदीने पाक रोजे अनवर पर हाजिरी हुई, तो अरबी में दो अशआर पढ़े जिनका तर्जमा था कि दूरी की हालत में अपनी रूह को खिदमत अकदस में भेजा करता था, वो मेरी नाइब होकर आस्थाने मुबारका को चूमा करती थी, और दूसरे शेर में कहा कि अब बदन के साथ हाजिर होकर मिलने की बारी आई है, ए आका अपना हाथ मुबारक अता फरमाइए, मैं इसे चूमने की सआदत हासिल करूं। जू ही अशार खत्म हुए, प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक कब्रे अनवर से बाहर निकला, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाही ताला लेने उसे चूमने की सआदत हासिल फरमाई। ये वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आवाज करम देता ही रहा थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी महरूम कोई लौटाया नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। इमाम अबू बकर बिन मुकरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम तबरानी हजरत अबू शेख रहमतुल्लाह अलैह और मैं, हम तीनों मदीने में हाजिर थे, दो दिन से खाना नहीं मिला था, भूख से निढाल हो चुके थे। जब इशा का वक्त आया तो मैंने रोजे पाक पर हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलजू भूख भूख, मैंने इसके सिवा कुछ और जबान से ना कहा। लौट आया मैं और अबू शेख सो गए, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला ने बैठे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने में किसी ने हमारे मकान पर दस्तक दी, हमने दरवाजा खोला, एक अलवी साहिब अपने दो गुलामों के हमरा तशरीफ लाए, दोनों के पास खाने से भरे हुए एक एक टोकरी थी। वो अलवी बुजुर्ग कहने लगे, शायद आप साहिबान ने बारगाह रिसालत में भूख की शिकायत की, क्योंकि मैंने ख्वाब में जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शरफ याब हुआ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात के बारे में फरमा रहे थे इनको खाना खिलाओ। बहरहाल उन्होंने हमारे साथ मिलकर खाना खाया और जो कुछ बच गया वो भी हमें दे दिया और तशरीफ ले गए। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी पानी, दाना है तेरा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ऐसे वाकयात हैं हमारे प्यारे आका इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, ये दूसरी मर्तबा जब हज के लिए हाजिर हुए तो दिल में ख्वाहिश थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जागती आंखों से दीदार अता हो जाए। आप इस हसरत में मवाजा शरीफ के सामने दुरूद पाक पढ़ते हुए हाजिरी दी, सारी रात खड़े रहे, मगर उस रात ये सआदत ना मिलनी थी। दूसरी रात आ गई तो आपने कलाम लिखा, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। या आजिजी में शैदा की जगह आपने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अब ये अशार पढ़ने थे, उसी वक्त पर्दे उठ गए और महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से अपने आशिक को अपना दीदार अता कर दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो अजीम दरबार है कि जिस दरबार में जाने वालों की बिगड़ी बन जाती है। तो ये अब है यही कि दिल में वो तड़प, क्योंकि बाज ऐसे बदनसीब भी कही कहेंगे, क्योंकि जाहिर साहिब इस्तेताअत शरायत अगर पूरी पाई जाए तो उस पर तो हज करना फर्ज होता है, लेकिन बाद नादान है, दुनिया भर घूमेंगे, एक से एक बड़ा बिजनेस करेंगे, नहीं यार जनाब टाइम नहीं है। अरे आपके ऊपर हज फर्ज हो गया तो अब काय का टाइम, सारे काम छोड़े, इस काम इस फर्ज को अदा करें। और फिर इसमें जो बाद नादानियां करते हैं कि जनाब चूंकि बच्चियों की शादियां नहीं हुई तो इसलिए नहीं कर रहे, देखिये इसके पूरे अहकाम है, इसको सीखे। अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है तो अब तो माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जगह ब जगह कायम है। मुफ्ती साहब से मिलकर बात करें, अपने मामलात बयान करें और पूछें कि शरीयत का क्या हुक्म है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना है। और फिर अपने अगर है साहिब इस्तेताअत हज फर्ज हो गया तो हज करना है। और फिर मदीने पाक की हाजिरी, क्योंकि ये दरबार ऐसा है वाकई कि जो एक बार होकर आता है ना, अब आप उसे पूछें, यानी कई ऐसे हैं जो ऐसे कारोबार करते हैं कि उनका ये रमजान शरीफ में दीगर में सीजन होते हैं, लेकिन माशाल्लाह मदीने की हाजिरी ऐसी कशिश है कि बार 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 हाजिरी के लिए तड़पते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहे कि अल्लाह पाक हमें भी हाजिरी मदीना की सआदत नसीब फरमाए, जब तक जिए बार 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 हमारी हाजिरी होती रहे, और जब आखिरी वक्त हो तो एक काश ऐसी हाजिरी हो कि वहीं बकी में हमें जगह मिल जाए कि मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। आका मैं हूं सुन्नी, रहूं तुरबत या रसूल अल्लाह, बकी
میں بن جائے تربت.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ یہ ذو الحجۃ الحرام ہے. کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، پس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے چار مہینے ذو القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب ہیں. ان مہینوں میں اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذو الحجۃ الحرام ہے، اور ذو الحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن، ان کو اشرع ذو الحج بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہیں. اور یہ دن کیسے؟ سنیے، ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے.
سبحان اللہ.
اب ہم نے ایک زندگی گزاری، خود سوچے زندگی میں ایسے کتنے موقع ملے ہم کو کہ ہم نے یہ پایا تو تھا لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے وہ ان دنوں کو پانے کے باوجود بھی ان میں عبادت سے غافل رہ جاتے ہیں. اور سنیے، عشر ذی الحج کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان ایام کی قسم ارشاد فرمائی، ارشاد ہوا والفجر وَلَيَالٍ عَشْر، صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی. تو ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. تو پتا چلا کہ ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں، اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ پیارے دن ہیں، عظیم راتیں ہیں کہ ان دنوں میں ایک نیکی کا شمار 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کے راتوں میں قیام کرنا، جا کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اب ہم کہیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے نصیب. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، بات سمجھانی ہے، بہت مجھے تو فائدہ ہوا پڑھ کر اس کو، کہ ایک ادارے والوں نے کوئی مقابلہ کرایا اور اس میں کہا گیا کہ بھائی جو اتنے اتنے نمبر لے گا اس کو ہم ایک زبردست انعام دیں گے. مقابلہ ہو گیا اور چند افراد انہوں نے وہ نمبر حاصل کر لیے. اب انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا گیا کہ ہم آپ کو مخصوص وقت کے لیے اپنے اسٹور میں داخل کریں گے، 2.5 منٹ کا وقت ہوگا، اس 2.5 منٹ میں آپ جو کچھ لے سکتے لے لیجئے. اب جو انعام جنہوں نے جیتا تھا وہ تیار تھے. اب جیسے ہی ٹائم شروع ہوا انہوں نے دوڑے لگا دی، جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے، جو آیا باہر پھینک رہے تھے کہ میرا یہ میرا. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے کام کا ہے کام کا نہیں ہے، قیمتی ہے قیمتی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھ رہے، دڑا دڑ. ایک نوجوان بڑے تحمل سے اندر گیا اور اس نے کچھ چیزیں سمیٹی، 2.5 منٹ کے اندر اندر وہ بالکل باہر آیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اس نے تو بڑا زبردست کام کیا. لیپ ٹاپ، بڑے بڑے اچھے قیمتی موبائل، بڑی بڑی قیمتی چیزیں وہ لے کر ترتیب سے اس نے رکھیں اور بڑی اطمینان سے باہر نکل کر وہ جیسے گر گیا اور ایک جملہ کہنے لگا کہ میں اپنی ٹیکنیک سے کامیاب ہو گیا. اب لوگوں نے جب حساب کیا تو اسے 8 سے 10 لاکھ روپے کا مال لے آیا بھائی 2.5 منٹ کے اندر اندر. اب کسی نے اس سے پوچھا کہ یار تو نے بڑا کمال کیا، تو نے بڑا کمال کیا. اس सबने किया लेकिन उन्होंने ये फायदा ऐसा नहीं उठाया जैसे तूने किया। तूने आखिर ये फायदा कैसे उठाया? उसने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि फुला दिन हमें 2.5 मिनट के लिए भेजा जाएगा तो मैं रोजाना स्टोर में आता था और स्टोर का मैंने अच्छी तरह चक्कर लगाया और मैंने देख लिया कि कौन सी चीज कहां पड़ी है, मेरे काम की चीज कौन सी है, कीमती चीज कौन सी है और कौन सी चीज कहां रखी है। तो चूंकि मैंने सब जगहें देखी हुई थी, पहले से ही अपना हिसाब किताब बनाया हुआ था कि 2.5 मिनट में मुझे सारा काम करना है, तो सबने 2.5 मिनट गुजारे अपने अपने अंदाज से। मैं तो अपने शेड्यूल के हिसाब से गया और कीमती चीजें मैंने अपने हाथ में ही रखी, फेंका भी नहीं उसको, और सलीके और इत्मीनान से लाकर मैं अपनी टेक्निक से कामयाब हो गया। हमें भी पता चलता है फजीलतें हैं, मगर क्या हम कोई प्लानिंग करते हैं? जैसे आज पता चला भाई ये रातें आ रही है, ये रात आ रही है, और हम जैसे दुनियादार नादान लोग, इनको अगर कहा जाए कि इस रात को जाग कर गुजारने 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप बताएं कौन कौन नहीं जागेगा? फुला ग्राउंड में आ जाओ आपको फुला फुला इनाम मिलेगा, सारे बेवकूफ जमा हो जाएंगे वहां पर। लेकिन ये जो नेकी है, ये जो मगफरतें मिल रही हैं, ये जो हमें सवाब मिल रहा है, ये जो हमें इन दिनों रातों में इनाम मिल रहे हैं, पुकारा जा रहा है कि है कोई मगफरत का तलबगार जिसकी मगफरत की जाए, है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल की जाए। लेकिन हम तो मजे से सो रहे होते हैं, या अगर मस्जिद में भी आ गए तो हम तो फजूलियात में लग गए, हम तो मोबाइल खोलकर बैठ गए। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हम तो जनाब अजान होती है मस्जिद में चले जाते हैं। अब अजान होती है मस्जिद में आते तो कहां बैठते हैं? वो तो सहन में बैठ के हवा खा रहे हैं। कोई बाद में आकर उसने पहली सफ में नमाज अदा की, बताए अकलमंद कौन? वही ना जो पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है आकर, और जो बेवकूफ है जो पीछे बैठा हुआ है। सवाब तो पहली सफ में है, सवाब तो बाद जमात नमाज पढ़ने वालों में है, सवाब तो इसी तरह की इबादत करने वालों में है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि जिंदगी में हो सकता है किसी ने 25 जुलहज गुजार दिए होंगे, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, हर साल ये दिन आते हैं, हर साल ये रातें आती हैं, लेकिन नीयत कर लें कि इस बार इंशाअल्लाह ये दिन और ये रातें ऐसी गुजारेंगे कि भरपूर सवाब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अब सवाब हासिल करने के कौन कौन से जराए होंगे तो आइए ना मदनी मुजाकरे में। अमीर अहले सुन्नत यही तो बयान फरमाते, यही तो प्यारा प्यारा अंदाज होता है कि जिसे सुनकर आज कितने हाफिज आलिम और ना जाने किस किस तरह से नेकियों की तरफ आ रहे हैं। शेड्यूल बना लेंगे कम से कम 1 घंटा 12 मिनट अमीर अहले सुन्नत के आने के बाद मैं इंशाल्लाह इनकी बातें सुनूंगा। आप सुने, यकीन माने, आप अपनी जिंदगी में बहुत तब्दीली पाएंगे, अपने घर में तब्दीली पाएंगे, मुआशरे में तब्दीली पाएंगे, शहर में तब्दीली पाएंगे, दुनिया में तब्दीलियां होंगी, रहमतें नुजूल होंगी, आफतें मुसीबतें बलाएं दूर होंगी। तो अल्लाह पाक खैर और सलामती के साथ हमें ये रातें ये दिन गुजारने की तौफीक दे, खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं।